ॐ ज्ञानदिव्यान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी व्रज निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश धारिणी। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतुषे तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंज रान्ते अद्वैम विशतु मे मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पीतौ कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। किरात हुणांड पुलिंद पुलक सा आभीर कंकर जवना कसद जेने च पापा जजुपाश्रयास शुद्ध्यं चितस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तपस्विनो दान परावशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदास मंगल क्षेमं न बिंदं त्रिभुवनदर्प तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इस गीत को बड़े बड़े देवता लोग गाते रहते हैं निरंतर। ये महामंत्र है। सभी आचार्य सभी संत इसी गीत को गाते हैं और इसी गीत के माध्यम से सबने भगवत प्रेम प्राप्त किया है। आप हम सब भी हरे थोड़ा हाथ उठा करके ऐसे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हम देखे ना देखे वो तो देख ही रहे हैं। हाथ उठाना हमारा वो देख लेंगे भगवान। वो तो हमारी इंद्रियों की कमजोरी है, हम देख नहीं पाते हैं और बहुत नजदीक बैठे हैं। वो अंदर ही है, हृदय में है। तो ये हमारी कमी रहा जीवन में कि हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब प्रभु के सामने इस जिह्वा से प्रभु के नाम स्मरण करते हैं, इसका जब कीर्तन करते हैं, जोर से इसका गीत गाते हैं, तो भगवान आकर के जिह्वा पर बैठ जाते और आपको बल प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं और कहते हैं कि जितना गाना है गाओ, मैं ताकत दे रहा हूं। बैठे हैं प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम छठा स्कंध अध्याय नौ श्लोक संख्या 50। स्वयं निःश्रेयसं वीतवान् भक्ति न भक्ति అజ్ఞాయ ముగ్గ్యాయ కర్మ హీ రాతి రోగిణ అపథ్యం వాంఛత అపి భీషక తమః స్వయం హి స్వయం నిశ్రేయసం విద్వాన్ స్వయం నిశ్రేయసం విద్వాన్ భక్తజ్ఞాయాయ కర్మహి నరాతి రోగిణో పథ్యం వాంఛతోపి భీవక్తం వాంఛతోపి భీవక్త వక్తశక్తకం స్వయం స్వతః నిశ్రేయసం జీవన్ కా పరమ లక్ష్య అర్థాత్ భగవాన్ కా ఆహ్లాదకారీ ప్రేమ ప్రాప్త కర్నే కే సాధన విత్తవాన్ జిస్నే భక్తి మే పూర్ణతయా ప్రాప్త కర్ లీ హై నా నహీ వక్తి శిక్షా దేతా హై అజ్ఞాయ మూర్ఖ కో జో జీవన్ కే చరమ లక్ష్య సే పరిచిత్ నహీ హై కర్మ సకామ కర్మ హీ నిసందేహ నా నహీ రాతి పిలాతా హై రోగిణా రోగీ కో అపథ్యం అసాధ్య అఖాద్య వంచత ఇక్షుక్ అపి యర్పి భీషక భీషక తమ అనుభవి వైద్య అనువాద తాత్పర్య ప్రభుపాద జీ కే ద్వారా భక్తి యోగ మే దక్ష శుద్ధ భక్త కభీ భీ మూర్ఖ పురుష కో భౌతిక సుఖ కే లియే సకామ కర్మ కర్నే కా ఉపదేశ నహీ దేగా ఐసే కార్యో మే సహాయతా కర్నా తో దూర్ రహా ఐసే భక్త ఉస్ అనుభవీ వైద్య కే సమాన హై జో రోగీ కే చాహనే పర్ భీ ఉసే ఐసా పథ్య గ్రహణ కర్నే కే లియే ప్రోత్సాహిత నహీ కర్తా జో ఉసే స్వాస్థ్య కే లియే హానికారక హో తాత్పర్య దేవతాఓ ద్వారా తథా పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవాన్ విష్ణు ద్వారా ప్రదత్త వరో మే యహీ అంతర హై దేవతాఓ కే భక్త ఇంద్రియ తృప్తి కే లియే వర మాంగతే హై ఇస్లియే భగవద్గీతా కే 17వే అధ్యాయ కే 20 నంబర్ మే ఇన్హే బుద్ధి సే విహీన్ కహా గయా హై కామస్తరి హితవిజ్ఞాన ప్రపద్యంతే అన్య దేవతా తమ్ తమ్ నియత మాస్థాయ ప్రకృత్యా నియత స్వయా భౌతిక ఇచ్ఛాఓ కే ద్వారా జిన్కే జ్ఞాన కో హర్ లియా గయా హై వేహీ దేవతాఓ కే శరణ మే దేవతాఓ కే శరణ లేకర్ అప్నే స్వభావ కే అనుసార్ ఉపాసనా కే విధి విధానో కా పాలన కర్తే హై బద్ధ జీవ ప్రాయ బుద్ధిహీన హోతే హై క్యోంకి ఉన్మే ఇంద్రియ తృప్తి కే లియే తీవ్ర ఇచ్ఛా రహతీ హై వె యహ నహీ జానతే కి కౌన్ సా వర మాంగా జాయ్ ఇస్లియే శాస్త్రో మే ఉపదేశ దియా గయా హై కి अभक्त जन भौतिक लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजन करें। उदाहरण यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो उसे उमा या देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई रोग से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की पूजा करने को कहा जाता है। किंतु देवताओं से बल प्राप्त करने की समस्त प्रार्थनाएं भौतिक कामनाएं काम वासना के कारण है। यह बल दृश्य जगत के अंत होते ही बल देने वाले के साथ समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई बल मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास जाता है तो वे उसे ऐसा बल देते हैं जिससे वह भगवान के धाम वापस जाने में सहायता करेगा। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10 नंबर में की है। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण उस भक्त को जो निरंतर उनकी सेवा करता है उपदेश देते हैं इस भौतिक देह की समाप्ति पर उन तक किस प्रकार पहुंचा जाए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4वें अध्याय के 9 नंबर में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जन। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य दिव्य तत्व को जानता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यह भगवान विष्णु या कृष्ण का वर है। शरीर त्यागने के बाद भक्त भगवान के धाम को जाता है। भक्त मूर्खतावश भौतिक वर मांग सकता है, किंतु भक्त की प्रार्थनाओं के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ऐसा वर देते नहीं। इसलिए जो लोग भौतिक जीवन की प्राप्ति अत्यधिक आसक्त हैं वे सामान्यतः कृष्ण या विष्णु के भक्त नहीं बनते अपितु वे देवताओं के भक्त बन जाते हैं। कामस्तरी अतिज्ञान परपद्यन्ते अन्य देवता, किंतु भगवद गीता में देवताओं द्वारा दिए गए वरों की निंदा की गई है। अंतवतु फलम तेषाम तद्भक्त्या मेधसाम। अल्पज्ञ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। अवैष्णव को जो भगवान की सेवा में नहीं लगता अल्प बुद्धि वाला मूर्ख माना गया है। रूपा जी बहुत सुंदर समझाते हैं, जो कहते हैं कि जो भक्ति योग में शुद्ध है, जो भक्त है, जिनका भक्ति योग में अधिकार है, प्रवेश कर चुका है भक्ति मार्ग में, जो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का मतलब यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती है। शुद्ध भक्त निष्काम हो जाता है, इंद्रियों तृप्ति के लिए कार्य कभी नहीं करता है शुद्ध भक्त। वे तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। यदि जीवन में कुछ कार्य भी करना है, उसको शरीर को आराम भी चाहिए, तो भगवान के लिए ही करता है। उस जीवन में कर्म भी करता है तो भगवान के लिए ही करता है। जीवन में यदि कुछ यात्रा भी करनी हो तो भगवान के लिए ही यात्रा करता है। यानी सारे जगत में जितने कर्म हैं वो सारे कर्म वह भगवान के निमित्त करता है, इसे शुद्ध भक्त कहते हैं। उसके जीवन में अहेतु की सेवा होती है, सेवा के बदले में कुछ चाहिए नहीं, जो शुद्ध है, जो पटु है, जो भगवान के साथ अपने जीवन को जोड़ रखा है, वैसे हम सबको भी भगवान के साथ अपने संबंध को पक्का करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। सीधा बैठो आप लोग, ब्रह्मचारी तुम सीधा बैठो। अहेतु की सेवा करता है, जिस सेवा में कोई मांग ना हो। हम लोग तो प्रणाम करने की भी सेवा करते हैं ना भगवान को, प्रणाम करने की एक सेवा है ना, जब प्रणाम करते हैं भगवान को तो प्रणाम करते करते भी मांगने का लिस्ट रख देते हैं सामने में, ये देखो हमने इतना मांगना है, अब तुम्हें मैं प्रणाम कर रहा हूं। संत जब प्रणाम भी करता है भगवान को तो उसके बदले में भगवान ही चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसका हृदय जो है निष्काम है, निष्कपट है, छल छिद्रता से मुक्त है उसका हृदय। अच्छा, खाली मकान हो तो खाली मकान में जल्दी कब्जा किया जाता है, और मकान यदि भरा हुआ है लोगों से तो उसमें कब्जा करना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा भी देखता है भक्तों के अंदर झांक करके, ढूंढता है, देखता है कि कौन सा भक्त का हृदय खाली है। हृदय खाली मतलब जिसमें काम ना हो, क्रोध ना हो, मोह ना हो, मत्सर ना हो, ईर्ष्या जलसी ना हो, ऐसे भक्त के हृदय में जाकर के चुपके से कन्हैया बैठ जाता है, खाली मकान है और प्रभु कब्जा कर लेते हैं उसको। उसको कब्जा कर लेते हैं, अधिकार समझते हैं उसको। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, संत का जो हृदय है वो गोविंद का आवास स्थान है, वहीं रहते हैं प्रभु। अब जब एक बार कन्हैया हृदय में बैठ जाए, आपके हृदय रूपी कक्ष में प्रविष्ट हो जाए, तभी तो उनकी चाल भी टेढ़ी है, खड़े होते हैं तभी भी टेढ़े खड़े होते हैं, कृष्णा देखते हैं तभी भी टेढ़े दिखते हैं। तब ये बताओ कि आपके सीधे सारे हृदय रूपी मकान में प्रविष्ट हो जाए तो टेढ़ी टांग वाला कभी निकलेगा उसमें से? कभी नहीं निकल सकता है। इसलिए शुद्ध भक्त का यही लक्षण है कि शुद्ध भक्त अपने हृदय को बिल्कुल साफ रखता है, उसका हृदय, उसका जीवन बालक के समान हो जाता है। हम सबका हृदय बालक के जैसा होना चाहिए। बालक भी निखर के बोलता है, कपट रहित बोलता है, छल छिद्रता से मुक्त होता है वो बालक, किसी के साथ भी खेल लेता है। वैसे संत महात्मा वैष्णव का हृदय सबके साथ राम राम कृष्ण कृष्ण कहते रहो। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भौतिक जीव को भौतिक वस्तु के लिए प्रोत्साहन नहीं करता है। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी मूर्ख पुरुषों को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का आदेश कभी नहीं देता है। जो इतना जिनमें शुद्धता है, पवित्रता है, निष्काम है, और निष्काम के साथ साथ निष्कपट भी है, जीवन में एक ही है उसका, जीवन में एक ही में निष्ठा है, कृष्ण में, राम में। ऐसा भक्त जो भौतिक संसार में भोग इत्यादि चाहता है, इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, अलग अलग इंद्रियों को भोग देना चाहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी उस व्यक्ति को उस रोग में नहीं जाने देता है। हमारी इंद्रियां सब रोगी हैं, हम सभी रोगी हैं। कोई कान का रोगी है, गाना सुनना चाहता है खूब, देखते हैं दिन भर लोग अपने कान में वो लंबा सा मोबाइल लेकर के सुनते रहते हैं लोग दिन भर, और सुनते सुनते भी हिलते रहते हैं सब, क्योंकि कान में जा रहा है ना सब। कान का उपयोग भगवान की कथा में करनी चाहिए, भगवान के दिव्य कथा को सुनने के लिए कान को लगाना चाहिए। इसीलिए अमरीश महाराज जी ने सबई मनः कृष्ण पदार विंदयो, अपने मन को भगवान के पाद पद्मों में लगा दिया था। श्रुति चकारम सत कथा दयो, अपने कान को भगवान की दिव्य कथा में लगाया उन्होंने। अपने इस इंद्रियों को भगवान के हृषिकेण हृषिकेशा, अपने हृषिकेण इंद्रियों से हृषिकेश भगवान की सेवा करनी चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए। हमारी इंद्रियां सब संसार में लगी हुई हैं। कान को दिव्य कथा सुनाने के बजाय इसमें निरंतर हम अपशब्द डालते हैं कान में, और कान के माध्यम से जो अंदर में हृदय में जो प्रविष्ट करता है वासना, अलग अलग इच्छाएं जो प्रविष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति को जीवन को उसके जीवन रूपी रथ को तोड़ डालता है। देखते हैं कामी पुरुष लोग जो विषयी पुरुष हैं, दिन भर दौड़ते हैं, सुबह से शाम तक रात्रि में भी दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। शाम होते होते इच्छाएं पूरा नहीं होती हैं, थक करके वो रथ खटिया पर चरपाई पर गिरा देते हैं, अब थक गया यार ब्रह्म लोग नहीं जाना। इस कान को भगवान की सेवा में लगाएं हम सब। जैसे कोई निपुण वैद्य है, निपुण डॉक्टर है, और रोगी नाना प्रकार के चीजों की कामना करता है, खाने की इच्छा करता है, उठने बैठने की इच्छा करता है, लेकिन रोगी के अनुसार वह वैद्य दवा थोड़ी देता है, उसके अनुसार थोड़ी कुछ प्रदान करता है। वो तो रोगी कैसे ठीक हो जाए उस प्रकार से दवा देता है। उसी प्रकार से संत वैष्णव महात्मा भौतिक प्राणी भौतिक जीव आते हैं संसार में, हम कई एक भक्तों को सुनते हैं, बहुत लोग आकर के उनके पास कुछ बात कहते हैं, अपनी अपना दुख सुनाते हैं, अपना सब कहते हैं, तो भक्त कहते हैं देखिए सभी रोग का एक ही दवा है, आप भगवान का नाम लीजिए ठीक हो जाएंगे। अरे भक्त के पास जाके एक घंटा रोया हो, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, पत्नी अनुकूल नहीं है, पड़ोसी भी गालियां देते हैं, एक घंटा से अपना दुखड़ा सुनाओ संत को, और संत एक मिनट में कहता है कि हमारे पास एक दवा है। क्या दवा भैया? बस भगवान के नाम लो ठीक हो जाओगे तो। क्योंकि उसके अनुसार वो बात नहीं करता है, ये नहीं कहता कि चलो पत्नी को समझा देता हूं, बच्चों को ठीक कर देता हूं, नहीं, वो कहता है कि इस रोग का दवा एक ही है, यदि आपके जीवन में आपकी पत्नी अनुकूल नहीं है तो आप भगवान के शरण में जाओ, आप प्रभु के अनुकूल हो जाओ। बच्चा आपका बात नहीं सुनता है, कोई बात नहीं, आप भगवान के साथ बैठ लो, ये संत ऐसा बताता है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें उनके कि भगवान का जो जन्म है, भगवान का जो कर्म है, वो दोनों दिव्य है, आध्यात्मिक है, ट्रांसडेंटल है। भगवान के जन्म जो होता है हमारे जैसा जन्म नहीं होता है, भगवान का जो दिव्य कर्म है वो हमारे जैसा कर्म भी भगवान नहीं करते हैं, वो भी दिव्य है। हम कर्म करते हैं तो इच्छा रखते हैं, और भगवान यदि कर्म कर देते हैं, किसी को कुछ वस्तु दे देते हैं, तो उसके बदले में इच्छा नहीं रखते हैं। जीव में और भगवान में यही अंतर है। हम कोई भी कर्म करते हैं उसमें जरूर थोड़ी न थोड़ी थोड़ी बहुत हम इच्छा रखते हैं उसमें, कि हमने कर्म किया है फल जरूर आना चाहिए, कुछ जरूर मिलना चाहिए। लेकिन भगवान यदि कोई कुछ कर्म करके किसी को दे देते हैं, कुछ वस्तु प्रदान करते हैं, तो भगवान याद भी नहीं करते हैं कि मैं इसको ये वस्तु दिया था, उनको याद भी नहीं रहता है इस वस्तु को देने के बाद। ये भगवान का कर्म है, भगवान का प्रत्येक कर्म दिव्य है। किसी को मुक्ति देते हैं वो भी दिव्य है, किसी को मार देते हैं वो भी दिव्य है, किसी को दर्शन देते हैं वो भी दिव्य है, और किसी को अपने वचनों से सिंच देते हैं वो भी दिव्य है। भगवान का, भगवान का जन्म हमारे जैसा जन्म नहीं होता है। हम तो 9 महीने माँ के गर्भ में 12 इंची के स्थान में रहते हैं, नीचे सर होता है और ऊपर में पैर होता है, जीव बंधा होता है, कष्ट होता है। खट्टा मीठा मैया जब खाती है बच्चे के शरीर पर, कोमल शरीर पर, कोमलांग अंग पर छन छन लगता है, चिल्लाता है, रोता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, निकालो बाहर, निकालोगे तो मैं इतना भजन करूंगा, इतना भक्ति करूंगा कि इसका ढेर लगा दूंगा। भगवान कहते हैं कि मैं सब समझ रहा हूं, तुम क्या कह रहे हो, बाहर निकलते हमें भूल जाओगे। और जीव यही करता है, भगवान से प्रार्थना करता है और जैसे बाहर आता है सबसे पहला काम करता है भगवान को भूलना, भूल जाता है जीव। और कोई संत उसको याद भी दिलाए तो कहते कौन भगवान है, किन भगवान की बात करते हो, सबको भगवान मान लेता है, फिर उसको बढ़िया ज्ञान नहीं होता है। इसलिए भगवान के दिव्य जो जन्म है, उनका जो कर्म है, अपने इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को खुश किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य है। अब कहते हैं कि एवं वेवेति तत्वतः, इस तत्व को जो ठीक से समझ लेता है, तत्वतः यानी इस ज्ञान को जो ठीक से प्राप्त कर लेता है, इसको ठीक से जान लेता है, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, क्या छोड़ करके, देहम, इस शरीर को त्याग करने के बाद फिर इस मृत्यु संसार में नहीं आता है जीव। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना, हे अर्जुन, हे महात्मा, शरीर छोड़ने के बाद उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है। और यदि हमने ठीक से भगवान को नहीं समझा तो जन्म पर जन्म लेते रहेंगे फिर हम, और जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने में और मृत्यु होने में इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है, हम सब तो भूल गए हैं, सब याद भूल गया है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में इस बात को कह रहे हैं, जो विषयी लोग हैं, जो कर्मी हैं, जो संसारिक वस्तु सुख चाहते हैं, वह व्यक्ति देवताओं के पास जाते हैं। कल हम लोग भागवत जी में पढ़ रहे थे, शाम को डेली बहुत संत लोग पढ़ते हैं भागवत। तो भगवान 5वें स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि किसी भी देवता देवी को निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देवता लोग भगवान के अंश हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं आप किसी के पांव दबाने की सेवा कर रहे हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, सावधान रहिए आप लोग, निंद्रा देवी आ सकती हैं। रूम बंद है, ठंडी का मौसम है, सबके गर्मी आ गया है, तो निंद्रा महारानी तो देखती रहती है। वो क्या हुआ ना कि जब कुंभकर्ण के पत्नी का नाम है निंद्रा देवी, तो भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया, राम जी ने जब मार दिया तो उसकी पत्नी ने कही कि आपके मैं मंदिरों में ना ताला लगवा दिया तो फिर कहना, बोला कैसे लगाओगी, बोले कि जैसे जैसे श्रोता आएंगे और वक्ता कहते रहेंगे कथा और श्रोता भी झोंका लेते रहेंगे, उनके मूड में जाके बैठ जाऊंगी, संत लोग कथा करेंगे और श्रोता लोग झोंका लेते रहेंगे, बोले कि नहीं नहीं, तो संत लोग भी तो उपाय जानते हैं। बोले क्या? बोले कि बीच बीच में बोलेंगे जय श्री कृष्णा, सुनिंद्रा देवी भाग जाएगी। सावधान रहिए आप लोग। और एक क्षण की बात तो है, जन्म मृत्यु में बहुत अंतर थोड़ी है। एक बार नाक से हवा निकली दोबारा नहीं गई तो अब क्या पता झपकी ले रहे हैं उसी समय निकल जाए, काम खराब हो जाएगा ना। तमोगुण में है हम सब, निरंतर हम सबको सतोगुण में स्थित रहना चाहिए। सोना है तो सो, खूब सो लो, कोई बात नहीं, रात्रि बनाए खूब सो। जब गुरु पूजा क्लास में आओ तो खूब जग करके ताली बजा के कथा सुनो खूब, जय श्री कृष्णा। तो जिनके मन में अनेक प्रकार की इच्छा है, जिनकी इच्छाओं से जिनका जीवन परिपूर्ण है, मांगना ही है, वह व्यक्ति कहां जाते हैं? देवलोक, देवता के पास जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको यदि सुंदर पत्नी चाहिए तो किसके पास जाना है? पार्वती जी के पास जाओ। जाना बुरा नहीं है, मांग बुरा है। जैसे देखो श्रीमद् भागवत जी में गोपियां भी गई माता कैतानी के पास, और कैतानी का खूब बढ़िया से विधिवत षोडश उपचारों से पूजन किया, खूब पूजन किया। और जब माता जी पूजन से प्रसन्न हो गई तो क्या मांगा? हे माता जी, यदि आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके हमें कृष्ण को पति के रूप में दे दीजिए। पूजा किसका किया? कैतानी। मांगा किसको? ऐसे मांग करो। देवता देवी के पास जाने में बुराई नहीं है, क्योंकि वो सब पावरफुल हैं, हमसे ज्यादा शक्ति रखते हैं, भगवान के अंश हैं सब। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति के पांव दबाने की सेवा कर रहे हो, तो उस व्यक्ति के पांव दबाते दबाते उस व्यक्ति की सेवा है, पांव की सेवा करने से उस व्यक्ति की सेवा है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी उसमें समझाते हैं, रात्रि को हम पढ़ रहे थे हम लोग दो चार भक्त, कि इनकी सेवा करने से भगवान की सेवा मानी जाती है। जैसे आपने पूजा की सेवा किया, जैसे माता जानकी जी ने राम जी को वर के रूप में चाहती थी कि राम जी हमारे पति बने, तो जानकी जी जनक बाग में गई और जनक बाग में राम जी भी थे। राम जी भी उस समय जनक बगीचा को देखने गए थे और फूल तोड़ने गए थे, अपने गुरु की सेवा करने गए थे। और उसी समय जानकी जी भी राम जी का दर्शन किया उसी बगीचा में, और राम जी को देखते ही जानकी जी ने मन में संकल्प किया कि यदि ये मेरे पति होते, और राम जी ने भी संकल्प किया कि जानकी यदि मेरी पत्नी होती तो मैं जीवन में, ऐसे तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं दो चार विवाह करने की अनुमति है, लेकिन यदि मेरे जीवन में जानकी जी आ जाए तो मैं भूल कर भी किसी पर स्त्री पर दृष्टि नहीं डालूंगा। इतना सुंदर संकल्प लिया, राम जी ने इसे सिद्ध भी किया, और जानकी जी ने भी कहा कि यदि राम जी मेरे वर के रूप में आ जाएं, पति के रूप में आ जाएं, तो आजीवन में पर पुरुष का चिंतन नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करूंगी। और जानकी जी ने भी सिद्ध किया, लंका में जब सैन्य बल के साथ रावण जब आता था जानकी के पास, तो जानकी जी एक तिनका के ओट देकर के रावण से बात करती थी, कभी देखा नहीं उन्होंने जीवन में पर पुरुष को। राम जी भी पंचवटी में जब सुपरेखा आई तो सुपरेखा जानकी जी को देख रहे थे और सुपरेखा से बात कर रहे थे राम जी, सिद्ध किया उन्होंने। तो जानकी जी राम जी को बल प्राप्त करने के लिए कहां भागी? पार्वती जी के पास गई, उसी बगीचा में मंदिर था, और उसी मंदिर में जाकर के पार्वती जी के प्रार्थना किया, और उन्होंने वरदान दिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मन जाहि राचो मिलई सोवर सहज सुंदर सांवर। पूजा किसका किया? मांगा किसको? राम जी को। आप चलते चलते रास्ते में कहीं कोई देवता आपको मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए, तो आप उनको प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, उन पर फूल पत्ती चढ़ा दीजिए, सेवा कर दीजिए, और सेवा करके हाथ बांध के कहिए, हे भोले बाबा, आजकल मैं बालसी हो गया हूँ, पहले तो 1,00,000 जप करता था, अब 5-6 माला रह गया है, कृपा करके आप ऐसा कृपा कीजिए ना कि कन्हैया का नाम का माला 1,00,000 फिर से बढ़ जाए। पूजा किसका किया आपने? और मांगा किसको आपने? भगवान। इसलिए संत लोग निंदा किसी का नहीं करते। भगवान शिव वैष्णव में आचार्य हैं, वैष्णव नाम यथाशंभु, आचार्य हैं भगवान शिव। आपने कभी देखा भगवान शिव किसी को निंदा किए हो? आचार्य हैं, निरंतर प्रभु के नाम का जाप करते हैं। तो देवताओं के पास भगवान ने एक बात बताई है कि देवताओं से जो संपदा मिलता है वो देवताओं के समाप्त होने के बाद वरदान भी समाप्त हो जाता है। भाई देवता की पूजा करोगे तो देवलोक में चले जाओगे, देवलोक में जाकर के जो देवताओं का नियम है उसका पालन करोगे, देवलोक में जाओगे। और यदि आपने पितरों की पूजा किया तो पितरलोक में चले जाओगे, और यदि आपने भूत प्रेत की पूजा किया तो भूतलोक में जाओगे। और प्रभु ने कहा कि यदि तुमने मेरी पूजा किया मेरे धाम में आओगे। बस अंतर यह है कि देवलोक में जाने के बाद, पितरलोक में जाने के बाद, भूतलोक में जाने के बाद तुमको जीवन के आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी। और यदि मेरे पास आ जाओगे तो पुनर्जन्मना फिर तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बात को समझा रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति ते। यहां प्रीतिपूर्वक की भक्ति की बात आई है। और गुरु पूजा में रोज गाते हो प्रेमा भक्ति, इसके बाद अविद्या, तो ये नींद क्यों नहीं जा रही है फिर? ये भी तो एक अविद्या है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रेमा भक्ति अभी दूर है हमसे, या हम प्रेमा भक्ति से दूर हैं, निकट नहीं है। यहां भगवान कहते हैं कि भजताम, जो मेरे को भजता है, जो मेरे भजन करता है, कैसे? प्रीतिपूर्वकम, प्रेम के साथ, प्रीति के साथ। जैसे महाप्रभु जब नाम लेते थे महाप्रभु तो क्या हंसते थे? या जमाई आती थी उनको? कभी देखा आपने महाप्रभु को जमाई आई हो या हंस रहे हो? महाप्रभु जब नाम लेते थे तो रोने लगते थे, ज्यादातर महाप्रभु के नेत्र भींगे होते थे, या महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे, अथवा उनकी वाणी साथ छोड़ देती थी, गला रुक जाता था। ये दशा होती। और हम लोग जब जब करना चालू करते हैं तो या तो मुंह खुलेगा जमाई आएगी, या तो कोई दोस्त आएगा तो उससे बात करेंगे फिर हम। वो प्रीतिपूर्वक भजन नहीं है। भगवान यहां गीता में कहते हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरा भजन करता है, जो मुझे भजता है और जो प्रेम पूर्वक भजता है, उस भक्त को मैं ददामी देता हूं। क्या देते हैं प्रभु? बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग दे देता हूं, ऐसा बुद्धि प्रदान करता हूं, ऐसा ज्ञान भक्ति प्रदान करता हूं ताकि वो मुझे ही प्राप्त कर ले। आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए स्कूल कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। मीरा जी कौन सा कॉलेज में गई थी? सूरदास जी कौन सा पाठशाला में पास किए थे? आज मीरा जी के पद को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उसके अर्थ लगाने में बड़े बड़े विद्वानों की दांत खट्टा हो जाता है, कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। सुरदास जी कौन सा पाठशाला में गए थे? भगवान यहां स्पष्ट करते हैं इस बात को। बहुत ऐसे संत हैं, बहुत ऐसे संत हैं जिनको राम राम भी नहीं कहने आता था। वाल्मीकि जी को लिखते हैं उसमें, उल्टा जपते थे, राम राम नहीं करते थे, मरा मरा सिखा सिखा करके थक गए और नहीं आता था। लेकिन आज ब्रह्म के जैसा, और वाल्मीकि रामायण पढ़ने में संस्कृत में ओरिजिनल, और आज वाल्मीकि रामायण पढ़ने में छोड़ दीजिए अर्थ लगाने में दांत खट्टा हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को समझने के लिए किसी पाठशाला की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव महाराज 5 साल की अवस्था थी, भला बताओ कौन से कक्षा पास किया था उन्होंने। और भगवत कृपा जब हुई, उन्होंने जब शंख स्पर्श कराया गाल में, तो महात्मा ध्रुव ने इतना सुंदर स्तुति किया भागवत जी में, इतनी सुंदर स्तुति किया भगवान का, अद्भुत है वो। इसलिए भगवान कहते हैं कि भजताम प्रीति पूर्वकम, यदि प्रीति प्रेम से मेरा भजन करोगे तो मैं देता हूं, ददामी, मैं देता हूं, क्या देता हूं, बुद्धि योगम, बुद्धि देता हूं, मैं ज्ञान देता हूं। ये नमाम उपयंतित, मुझे ही प्राप्त कर लोगे तो। ये भगवान कहते हैं, भगवान का प्रत्येक वस्तु दिव्य है, ट्रांसडेंटल है, आध्यात्मिक है। इसलिए हम सब भक्तों का परम कर्तव्य है, हम लोगों का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करें। बड़े अच्छे अच्छे संत हैं, गृहस्थ संत हैं। एक बार शायद मैं कभी कथा बताया था कि नहीं, एक भक्त थे, सेठ जी थे, और उनका नाम था धनुर्दास। संत जी थे, लेकिन संसार में मन बहुत था, दीक्षित शरीर था, दीक्षा लिया था उन्होंने। गुरु जी थे रामानुजाचार्य जी उनके। तो एक दिन रंगनाथ जी के सवारी निकली थी, सवारी जा रही थी रंग जी की, तो सभी भक्त लोग नाम संकीर्तन करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जा रहे थे सब। इन्होंने क्या किया कि अपने धर्मपत्नी के साथ में थे, और गर्मी का समय था, तो अपने धर्मपत्नी को इन्होंने छतरी लेकर के, पत्नी को छतरी ओढ़ा रखे हैं, और पत्नी सामने से आ रही है, और ये भी उसके मुखड़ा देखते पीछे पीछे चल रहे थे। और सारे भक्तों ने देखा, दीक्षित शरीर है, जीवन में गुरु धारण किए हैं, और रंग जी की सवारी निकली है, ये तो बड़ा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकते ये संत हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सभी भक्तों का मन खराब हो गया। शाम हुआ तो जाकर के गुरु जी से कहा कि गुरु जी, वो आपका जो शिष्य है ना, वो शिष्य आज इसने बड़ा अच्छा कर्म नहीं किया, इसने आज, अरे भाई ठीक है, जीवन में कामुकता है, काम है, काम बड़ा हुआ है, तो रंग जी की सवारी निकली है, सवारी के सामने हजारों संत नृत्य करते हैं, प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं, और ये पत्नी को छतरी ओढ़ा करके उसके मुखड़ा देखते हुए जा रहे हैं। जब सभी शिकायत करके चले गए, तो गुरु जी ने धनुर्दास को बुलाया। धनुर्दास जी, भाई धनुर्दास, अब एकाएक गुरु जी कह देते कि भाई देखो, संतों के बीच में ये हड्डी और चमड़ी से बने हुए शरीर में तुम इतने आसक्त रहते हो, प्रेम करते हो, तो शायद धनुर्दास को बुरा लग जाता। धनुर्दास से प्रभु ने कहा, गुरुदेव भगवान ने कहा कि धनुर्दास जी, रंग जी की सवारी निकल रही थी, आपने ऐसे किया। धनुर्दास जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या कहूं, मैं बहुत कामी हूं, विषयी हूं, इस संसार में मेरे अपने पत्नी के जैसा सुंदर कोई चीज दिखता ही नहीं है। बहुत सुंदर दिखती है मेरी पत्नी। गुरुजी ने कहा कि यदि आपके पत्नी से कोई सुंदर किसी को दर्शन करा दिया जाए तो आप क्या करोगे? बोले पत्नी छोड़ दूंगा मैं, अलग हो जाऊंगा मैं। बोले अच्छा, अब देखिए गुरु की कृपा। गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है। गुरुजी ने रंगनाथ जी के पास ले गए मंदिर में, औरंग जी से कहा कि प्रभु ये आपका भक्त है, सेवा बहुत करता है, बहुत सच्चा भक्त है, लेकिन संसार में विषय वासना बहुत जीवन में है, इसको आप मुक्त करा दीजिए। और गुरु जी की आज्ञा हुई, प्रभु ने दर्शन दे दिया। अब जब दिव्य छटा के दर्शन दिया प्रभु ने, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रभु, कानों में कुंडल है, घुंघराले बाल हैं, ओठ लाल लाल है, भगवान के पद्माक्ष यानी कमल के फूल के जैसा नेत्र हैं, प्रभु ने दिव्य दर्शन दिया और धनुर्दास जी बिल्कुल प्रभु के चरणों में पड़ गए। चरणों में पड़ने के बाद गुरुदेव भगवान के पास आए, पत्नी के साथ रहने लगे, लेकिन अब भगवान का दिव्य दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद संसार का विषय त्याग छूट जाता है अपने आप। धनुदास जी अब सत्संगी बन गए, गुरु जी के सत्संग में बैठने लगे। सत्संग में विलंब हो जाता था तो धनुदास के परीक्षण करने के लिए गुरु जी ने कहा कि देखो धनुदास जी सत्संग में बैठते हैं, अब देखो कि प्रभु के दर्शन के बाद इसका जो वैराग्य है ये कच्चा है कि पक्का है, ये साधक कैसा है, साधक ठीक है कि नहीं ठीक है। तो परीक्षण लेने के लिए धनुदास जी कथा सुन रहे थे, परीक्षण लेने के लिए धनुदास के घर में दो शिष्यों को भेज दिया कि जाओ जितना माल पानी उठा के लाओ। अब शिष्य लोग गए तो पत्नी घर में थी, जगी हुई थी, और मंदिर के पुजारी लोग चोर के भांति प्रवेश कर गए। जब चोर के भांति प्रवेश कर गए तो पत्नी ने देखी कि हमारे घर में पुजारी लोग आए हुए हैं, क्या बात है। तो सो तो नहीं रही थी लेकिन सोने की बहाना कर लिया। अब पुजारी लोग ने सारा माल मटेरियल लपेट लिया, घर में जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात था सब ले लिया, भर लिया बैग में। लेकिन धनुर्दास के पत्नी के कान में कुंडल बड़ा सुंदर था। उन लोगों ने सोचा कि ये भी निकालो। तो धनुर्दास के पत्नी एक कट से सो रही थी करवट लेकर के, इधर से खोल लिया और धनुर्दास के पत्नी चुपचाप देखती रही। लेकर के आ गए, गुरुजी ने कहा कि धनुर्दास जी अब देखो बहुत विलंब हो गया है, तुम बहुत देर से बैठे हो, पत्नी तुम्हारी राह देख रही होगी, अब तुम जाओ। धनुर्दास जी जब घर में आने लगे तो अपने दो शिष्यों को भेज दिया, जाओ पूछ देखो धनुर्दास क्या कहता है, इसके मन में धन आ गया है, कुछ कह रहा है क्या। दो शिष्यों को जब भेजा तो धनुर्दास से सारी पत्नी ने उनकी सारी कथाएं बता दी और पत्नी ने कही कि महाराज अब ये ऐसे बोलने लगे। बोलते 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 पत्नी से कहा कि तुमने जरूर धन का लोभ किया होगा, धन में धन का लोभ आ गया होगा, तुमने एक कान का भी नहीं दे दिया, एक ही कान का दिया, तुम ऐसे क्यों तुमने किया। अपने पत्नी को डांटने लगे तो शिष्य लोगों ने देखा और जाके गुरु जी से कहा। तो गुरु जी से जाकर के कहा तो गुरु जी ने कहा कि देखो धनुदास के जीवन में वैराग आ गया है, संसारिक वस्तु वासनाएं छोड़ दिया है उनके जीवन में, अब संसारिक विषय वासना नहीं रहा। तो धनुर्दास जी गुरु की कृपा से इतने शुद्ध हो गए, इतने पवित्र हो गए कि जब गुरुदेव भगवान गंगा स्नान करने जाते थे तो साथ में जाते थे, और जब गंगा स्नान करके लौटते थे वहां से तो धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख करके लौटते थे। तो शुद्ध भक्त जो है वो भौतिक संसार के विषय वासना से मुक्त करने का उपाय करता है। किसी मूर्ख व्यक्ति को विषय वासना में जाने का कभी भी उत्साहित नहीं करता है। ये प्रभुपाद जी इस बात को इस श्लोक में इसका भाव प्रकट करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। हम समझते हैं समय हो गया है, अभी समय है, थोड़ा हो गया है, कहाँ है घर, हाँ ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे राम, बहुत धन्यवाद आप सबका। सुखी रहें आप सब, भगवान के चरणों में मन लगा रहे आप सबका।